हरे कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 40 एंड 41। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकण रघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 40 एंड 41। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही मधुर शब्दों को मेरे साथ साथ आस्वादन करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ईशतु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। शब्दात् न अर्थात न तो अंत यानी सीमा है अस्ति है मम मेरे दिव्यानाम दिव्य विभूतिनाम ऐश्वर्यों की परंत हे शत्रुओं के विजयिता। एष यह सब तू लेकिन उदेशत यानी उदाहरण स्वरूप प्रोक्त कहे गए हैं विभूते ऐश्वर्य को विस्तर यानी विशद वर्णन मया मेरे द्वारा। भगवान कहते हैं परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ कहा है वह तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए। मूकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भगवद्गीता चैप्टर 10 जिसका शीर्षक है विभूति योग यानी भगवान का ऐश्वर्य। भगवान ने संसार के कण कण में किस तरह वो समाये हुए हैं, किस तरह से हर एक वस्तु में जो ग्रेटेस्ट है जो सबसे हाईएस्ट सुपरलेटिव है वो भगवान है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, उतनी सब विभूतियों को बताने के बाद अब इन चार श्लोकों में भगवान विभूतियों को समाप्त करके अब कंक्लूजन बता रहे हैं। और जैसे कल भगवान ने बताया यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन, जो कुछ भी दिख रहा है उसका बीज में हूँ यानी मेरे बिना न तदस्ति विना यच्चान मया भूतम चराचरम, मेरे बिना किसी भी वस्तु का होना संभव नहीं है। विदाउट मी नथिंग कैन एक्सिस्ट एनीथिंग, मेरे अतिरिक्त कोई भी जब तक मेरी कृपा ना हो जब तक मेरी सहायता ना हो तब तक कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, तब तक कोई भी चर अचर वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। और इसी चीज को आज भगवान आगे कहते हैं बताते हुए कहते हैं बहुत ही सुंदर है। भगवान कहते न अंतोस्ति मम दिव्यानाम न अंतोस्ति। अर्जुन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं विभूति नाम परंतप हे परंतप मैं तुम्हें कितना बताऊं, जितना भी बता दूंगा ना तो कभी भी उसका अंत नहीं होगा क्योंकि अंत तो है ही नहीं। न अंतोस्ति कोई अंत नहीं है मम दिव्यानाम मेरी दिव्य विभूतियों का, क्योंकि दिव्य है तो ये हर क्षण वर्धमान है, भगवान की विभूतियां भगवान का ऐश्वर्य भगवान के गुण हर क्षण बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं यहाँ तक सीमा है, कोई सीमा नहीं है भगवान के गुणों की भगवान की विभूतियों की। तो भगवान जितना बताते जाएंगे तो भी तो वो बढ़ते जाएंगे। तो अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन मैं कितना बताऊं तुमको क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अब भी जो मैंने तुमको बताया एष तु देशतः प्रोक्तो, अभी जो मैंने तुमको बताया है जो प्रोक्तो यानी मैंने बताया है अभी जो तुम्हारे सामने वो तो उदाहरण है उदेशतः यानी उदाहरण के स्वरूप, जैसे कि ऐसा भी हो सकता हूँ ये भी हो सकता हूँ। विभूतेर विस्तरो मया मेरी विभूतियां अनंत हैं, मैंने तो तुम्हें अभी केवल उदाहरण दिया है कि इस तरह से होते हैं। वास्तव में भक्तों संपूर्ण विराट जगत में जिस वस्तु और जिस जीव को देखा जाए हर एक वस्तु, हर एक जीव जो है वो भगवान की दिव्य विभूति का प्रमाण देती है। वास्तव में हर कुछ इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, सब कुछ मैरिकल जैसा लगता है। हर चीज को भी अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, एक फूल को यदि हम देखते हैं तो एक फूल जो है वो छोटा सा होता है, बीज। बीज के अंदर न रंग है, न बू है, न ही उसके अंदर कोई आकर्षण है, लेकिन वही बीज जब धरती में जाता है, अब धरती के अंदर भी अगर देखा जाए तो वो सुंदरता नहीं है जो एक फूल के अंदर होती है, लेकिन वो एक बीज जो दिखने में बिल्कुल निर्जीव लगता है ना, बीज के अंदर हमें जीव नहीं दिखता, वो तो सूखा हुआ बीज होता है, और वो बीज जब धरती के अंदर जाता है तो इतने अनेकों वृक्ष में से ऐसे अनेकों अनेकों बीज हो सकते हैं, उनमें से अनेकों अनेकों फूल निकल सकते हैं, और उन अनेकों बीजों में से असंख्य वृक्ष बन सकते हैं। हर एक वस्तु को देखकर एकदम आश्चर्य जैसा लगता है, और ये सब केवल भगवान ही की कृपा से संभव है, केवल भगवान की दया, भगवान की विभूति। अभी आत्मा है, हम देखते हैं एक एक शरीर है और उसके अंदर आत्मा है, तो वो आत्मा इतना छोटी से छोटा सा शरीर होता है, आत्मा के होने का लक्षण यह है कि वो शरीर की वृद्धि करता है। जिसके अंदर आत्मा नहीं होती है वो शरीर बढ़ता नहीं है, लेकिन छोटा सा बच्चा अभी तक छोटा होता है माता के गर्भ में, उस समय उसके अंदर आत्मा होती है, और फिर वो माता के गर्भ में ही किस तरह से बड़ा हो रहा है, धीरे 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 बड़ा होते हुए एक समय ऐसा आता है कि वो उस शरीर से बाहर निकलता है, उस समय उसके अंदर इतनी चेतना नहीं होती, लेकिन धीरे 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 वो अपनी बुद्धि को विकसित करता है, उसका शरीर विकसित होता है और बड़ा होता है। बड़ा होते होते जवान होने के बाद वो कुछ समय वहीं स्टे करता है, मतलब थोड़ा सा समय तक वो इसी तरह से रहता है, और उसके बाद वो क्षीण होना शुरू होता है। वही आत्मा, वही शरीर, और इस पे हमारा कुछ बस भी नहीं चलता है ना। ऐसा नहीं होता कि हम सोचे कि नहीं अब मैं बच्चा हो गया हूँ, अभी मैं बच्चा ही रहूंगा, मैं बड़ा नहीं। ऐसा चार कुमार तो कर सकते थे, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें मजबूरन बड़ा होना पड़ता है, मजबूरन बूढ़ा होना पड़ता है, और मजबूरन मरना पड़ता है। ये हम भले समझते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, लेकिन हम अपने शरीर पर भी कंट्रोल नहीं करते, हम अपने इस शरीर को भी बूढ़ा होने से नहीं बचा सकते, मरने से नहीं बचा सकते। तो ये सब जो है वो भगवान की कृपा से, और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी हम इस शरीर को छोड़ के, हम स्वयं आत्मा हैं, और शरीर को छोड़ के हम दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। हम इसमें हम कुछ नहीं कर, ये कितना आश्चर्यजनक है कि हम कभी इस मनुष्य के शरीर में रहते हैं और अपने कर्मों के अनुसार विवश होकर किसी पशु के शरीर में हमें डाल दिया जाता है और हम कुछ नहीं करते। और कभी ऐसा भी होता है कि हम पशु के शरीर में होते हैं और हमें देवताओं की योनि प्राप्त हो जाती है अपने कर्मों के अनुसार। तो ये सब कौन कर रहा है, ये सब किस तरह से हो रहा है, अगर एक एक वस्तु को, एक एक चीज को हम ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि भगवान की कितनी सारी दिव्य विभूतियां हैं, भगवान के कितने सारे कार्य हैं, भगवान की कितनी कृपा है जीवों के ऊपर। तो नान तो भगवान कहते हैं मेरी जो विभूतियां हैं, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, तुम किस किस वस्तु को देखकर मुझे स्मरण करो, इसका कोई अंत नहीं है। संसार में जो कुछ भी दिखता है, एष तो देशतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया, ये तो मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन तुम जब भी जहाँ कहीं भी कोई वस्तु देखो उसे फौरन मुझसे रिलेटेड करके देखो, क्योंकि मेरे बगैर तो ना तदस्ति विना यस्यान विभूतिम चराचरम, मेरे बगैर तो कोई वस्तु का होना संभव नहीं है। तो हर एक वस्तु को देखकर आप मुझे स्मरण कर सकते हो। जब हम इस भौतिक जगत में भी जब हम किसी की कोई वस्तु देखते हैं, तो फौरन उस व्यक्ति का स्मरण आता है ना। किसी की भी, जैसे एक माता होगी घर पे वो कार्य कर रही होगी, अचानक से उसका एक बेटा जो है वो विदेश में पढ़ने के लिए गया है और वो उसका ड्रॉर खोलती है, उसके रूम में जब वो जाती है तो उसकी सारी वस्तुएं रखी होंगी, वो जो परफ्यूम यूज कर रहा है, वो उसके जो शूज होंगे, उसका टाई, उसका सूटकेस, उसकी ड्रेस देखकर फौरन से कैसे याद आएगा कि मेरा बेटा, ये सब चीजें उसकी हैं। तो इस भौतिक जगत में भी हम किसी की कोई वस्तु को, जैसे अभी श्रीला प्रभुपाद जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मतलब वो गुरु हमें छोड़कर कभी नहीं जाते, वो अपने वाणी स्वरूप में सदैव हमारे पास होते ही हैं, लेकिन जब हम उनके शब्दों को पढ़ रहे हैं, आज हम भगवद गीता को पढ़ते हैं, तो फिर हमें कैसा लगता है, श्री प्रभुपाद जी की फौरन से याद आती है। जब हम राधा दामोदर में वृंदावन में जाते हैं, श्री प्रभुपाद जी के किचन में जाते हैं, वहां पर श्री प्रभुपाद जी के हाथों से जो जहां पर वो किचन में काम करते थे उनके बर्तन, और इस्कॉन्जू में जब हम जाते हैं, जो भी हम इस्कॉन के टेम्पल्स में जाते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की पेन रखी होती है, उनका लैंप रखा होता है, और वहाँ वो जहाँ पर शास्त्रों को लिखते थे वो वस्तुएं, तो उनको देखकर कैसे डायरेक्ट से हमें वह व्यक्ति का स्मरण हो जाता है जिसकी वो वस्तु होती है। तो उसी तरह से भगवान ये बता रहे हैं कि हर एक वस्तु में, जो भी वस्तु आप देख रहे हो, चाहे वो चर हो या अचर हो, उसमें तुम मेरे तेज को देखो, उसमें तुम मुझे देखो, कोई लिमिट नहीं है, ना अंतोस्तिमम, कोई लिमिट नहीं है, तुम हर एक वस्तु को देखकर मुझे स्मरण कर सकते हो, और तुम्हें, और जीव आत्मा का कल्याण इसी में है कि वो भगवान को स्मरण करे। अर्जुन ने ही तो पूछा, केशु केशु त भावेशु, किस किस भाव से आपको स्मरण कर सकता हूँ, तो भगवान कहते कोई अंत नहीं अर्जुन, हर वस्तु को देखकर आप मुझे स्मरण कर सकते हो। इसी चीज को भगवान आगे श्लोक नंबर 41 में बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं। वास्तव में भक्तो, ये जो श्लोक नंबर 41 है वो पूरे अध्याय का निष्कर्ष है। यदि ये चीज समझ में आ जाए ना, तो फिर समझो पूरा अध्याय समझ में आ गया। बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने। भगवान शब्दों को बहुत ही सुंदरता से उच्चारण करते हुए कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत् तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभवम् यद्यद् विभूतिमत्सत्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभवम् यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभवम् शब्दात् यद्यद् यानी जो जो, विभूति यानी ऐश्वर्य, मत युक्त, सत्त्वम् यानी अस्तित्व, श्रीमत् सुंदर, ऊर्जितम तेजस्वी एव वा निश्चय ही अथवा तत्तत्वेवे एव निश्चय ही अवगच्छ, जानो त्वम तुम मम तेजो अंश संभव, मम मन मेरा, तेजो यानी तेज का, अंश यानी भाग या अंश, संभवम यानी उत्पन्न। अनुवाद, भगवान कहते हैं तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सफुलिंग मात्र से उद्भूत हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्मिक जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर भगवान एक जनरल प्रिंसिपल बता रहे हैं। बहुत ही भगवान कह रहे हैं यद्यत विभूति मत सत्वम, यानी कि जिस असत्वम का मतलब है कि जिसका अस्तित्व है, जिस जिस वस्तु जो जो ऐश्वर्यमयी वस्तु आपको दिख रही है इस भौतिक जगत में, जो भी जिसका अस्तित्व है और वो ग्लोरियस है, वो अगर सुंदर है, भगवान कहते हैं श्रीमधुर्जितम एववा। श्रीमद मतलब जो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत सुंदर लगती है, और उर्जितम मतलब जो बहुत तेजवान लगती है, जो तेजस्वी लगती है, या जो ऊर्जवान लगती है, यानी कि ग्लोरियस लगती है, जो सुंदर लगता है, जो आकर्षक लगता है इस भौतिक जगत में, जो कुछ भी है, चाहे यहाँ तक कहा, चाहे वो इस भौतिक जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का, आज तक आपको जिस जिस वस्तु ने अट्रैक्ट किया है, हर एक वस्तु जो कि सुंदर है, जो कि तेजस्वी है, जो कि ऐश्वर्यवान है, वो क्या है? भगवान बहुत सुंदर बताए हैं, तत् तदेवावगच्छत्वम्। तत् तदे वो सारी वस्तुएं एव ही, निश्चय ही, उसमें कोई संदेह मत करना। मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुनो अर्जुन। तत् तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभव। मम मेरे ही तेज का एक छोटा सा अंश है, दैट इज अ स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। मेरा जो बहुत बड़ा तेज है, यानी भगवान को यदि तेज पुंज माना जाए तो उसकी एक छोटी सी चिंगारी है इस भौतिक जगत में, जो कुछ भी आपको आकर्षित लग रहा है। वास्तव भक्तों, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु में यह गुण है ही नहीं कि वो आपको आकर्षित कर सके। कृष्यते आकर्षति इति कृष्ण। यदि कोई आकर्षण कर सकता है तो केवल कृष्ण ही है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इस संसार में तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखती हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे किसी को फिल्म स्टार्स की जो सुंदरता है वो आकर्षित करती है, पागल होते हैं लोग उनको देखने के लिए, एक सीन देखने के लिए सोचते हैं और फिर उनसे मिलने के लिए कितना क्रेजी होते हैं। कुछ लोग क्रिकेटर के स्टाइल को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं कि वो क्रिकेटर मुझे इतना फिदा है सब एक इस भौतिक जगत की व्यस्तियों में। तो ये सब ठीक है कि आपको वो फिल्म स्टार की सुंदरता आकर्षित करती है, किसी का बल आकर्षित करता है, किसी का स्टाइल आकर्षित करता है, लेकिन जरा ध्यान से देखा जाए तो जब ये कल पैदा हुए थे कोई फिल्म स्टार, या जब कोई क्रिकेटर पैदा हुआ था, तो उस समय क्या वो उसी तरह से सिक्सर लगाता था? क्या वो उसी तरह से बैट उठा के घुमा घुमा के मारता था? पहले जब ये पैदा हुआ था तब तो उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता था। मतलब यहाँ पर यह समझना चाहिए कि ये गुण आखिर उसके अंदर आया किधर से, है ना? पैदा होते बच्चे सब एक जैसे लगते हैं और उसके बाद धीरे 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 उनके गुण बढ़ते हैं। तो ये सब गुण कहाँ से आते हैं? दीज आर ऑल गॉड्स ग्रेस। ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं आपको जिस जिस यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया चित्त मित्रति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विददाम्याम। मैं हर वो वस्तु तुम्हें प्रदान करूंगा जिसको प्राप्त करने के लिए तुम स्ट्रगल करोगे, इच्छा करोगे, तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो तुम्हें आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी इच्छा के कारण है। कभी भले इस जन्म में नहीं, लेकिन कभी हमने ये इस तरह का संग की इच्छा की होगी, कभी हमने ये इच्छा की होगी कि हम भगवद गीता को बैठ के पढ़ें, सीरियसली भगवद गीता के शब्दों को श्रवण करें और आज भगवान ने हमारी ये इच्छा पूरी कर दी। हालांकि अगर इससे 4 साल पहले अगर देखा जाए, 4-5 साल पहले तो व्हाट्सएप भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि हम इस तरह से बैठ कर, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई कहां पर बैठा हुआ है, कोई इंडिया में बैठा हुआ है और हम मिलकर एक जगह पर भगवद गीता पढ़ें। तो ये हमारी एक इच्छा होती है और भगवान उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं जो कुछ भी आपको आकर्षक लगता है इस भौतिक जगत में, कोई भी वस्तु, वो क्या है, तत्तदेवावगच्छत्व मम तेजो अंश संभव, कि वो मेरे महान तेज के एक सफुलिंग मात्र से उद्भूत होता है। हर वस्तु अगर आप सुंदरता से प्रेम करते हो तो वो सुंदरता, वो एक छोटी सी चिंगारी तो उस व्यक्ति के अंदर है जो तुम्हारे सामने है, लेकिन उस सुंदरता का पुंज जो है, वास्तव में जो समुद्र है, वो तो भगवान है। क्योंकि भगवान के अंदर ये षडेश्वरी, आज अगर इस भौतिक जगत में हम अगर किसी वस्तु से अट्रैक्ट होते ना तो वो 6 वस्तुएं हैं, या तो कोई धन से आकर्षित होता है, या तो सुंदरता से, या तो बल से, या तो ज्ञान से, या तो फेम से, या तो वैराग्य से, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं, सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह कमाने के लिए पीछे होते हैं, और धन प्राप्त करना, और धन, अपने जीवन की भी विषय में सोचते नहीं है कि हमारा मनुष्य जीवन इस तरह से धन कमाते कमाते एक दिन हम समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी सोचते नहीं है। लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं कि जितने भी धनी हैं, वो सारा का सारा धन का ज्यादातर असली जो मालिक है वो भगवान है, है ना। जो कुछ भी है आज इस संसार में, हम इतने सारे लोगों को देखते हैं, लोग घर लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं और हम बोलते हैं ये हमारी है, हमारी है, हमारी है। ऐसे कहते कहते एक दिन मर जाते हैं, सैकड़ों पीढ़ियां जो हैं वो ऐसे कहते कहते मर गई। किसी की हुई है ये धरती, किसी की हुई है लक्ष्मी, कभी कोई ऐसा संसार में पैदा हुआ है जिसने सोचा हो कि मैंने तो बहुत सारा धन कमा लिया है, अब मैं ऐसा करूंगा जब मरूंगा तो फिर ये धन मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, क्या कभी ऐसा संभव है? नहीं, ये सब भगवान का ही है, तभी तो छोड़ के चले जाते हैं। कोई अपनी सुंदरता को साथ नहीं लेके जा सकता, कोई अपने ज्ञान को साथ नहीं ले जा सकता, ये सब भगवान का है। भगवान ने थोड़े समय के लिए आपको दिया है, उसका उपयोग करो, किसके लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बस ये है वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि जो कुछ भी आपके पास है वो भगवान का ही है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो भगवान का ही है, तो उसको यूज करना है, क्यों, भगवान की सेवा के लिए। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझसे अलग हो, जो कुछ भी आपको सुंदर आकर्षण दिखता है वो सब मेरे तेज का एक सफुलिंग मात्र है। तो इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है कि इस भौतिक जगत से जब हम जुड़ते हैं तो हर एक वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो वस्तु के द्वारा हम भगवान से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। जो कुछ भी आपको इस भौतिक जगत में आकर्षक दिखता है तो उस वस्तु के द्वारा भगवान से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि रिकनेक्ट होते हैं। भगवान कहते हैं उसको देखकर आप मुझे स्मरण करो। ये जगत जो है वो भगवान ने इतना सुंदर इसलिए बनाया है कि हमें ये हम ये महसूस करें कि जिस भगवान ने इतना सुंदर जगत बनाया है वो भगवान कितना सुंदर होगा। मतलब ये है, यहाँ पर समझने की बात क्या है, ये दिस इज द कंक्लूजन, समझने की बात ये है कि अगर हम इस भौतिक जगत की हर वस्तु को इंडिपेंडेंटली, कि ये स्वतंत्र है और ये मुझे प्राप्त करनी है, अगर भगवान से उसका संबंध तोड़ देंगे और उस वस्तु की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो हम कृष्ण को भूल जाएंगे, है ना। हम कृष्ण को भूल जाएंगे और कर्म कांड में लग जाएंगे, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, बस ये हमारे जीवन का मकसद बन जाएगा और इसको कर्म कांड कहते हैं, कि हम भगवान को भूल जाते हैं और वस्तुओं के अंदर आकर्षण रखते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हर एक वस्तु मिथ्या है, इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके बारे में सोचा जाए, जिसको देखा जाए, जिसको प्राप्त करने की इच्छा की जाए, सब कुछ मिथ्या है, सबका त्याग कर लो और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे प्रेम किया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं। तो वो भगवान को भी छोड़ दो, भौतिक वस्तुओं को भी छोड़ दो, फिर ब्रह्म तेज में लीन हो जाओ। परंतु ऐसा कौन करते हैं? जो ज्ञानी अपने आप को कहते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान मार्ग में चलते हैं, वो किसी भी वस्तु में कोई आकर्षण। परंतु हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हमारे हृदय के अंदर कुछ आकर्षण रहता है। तो निष्कर्ष ये है कि जो कर्मकांडी होते हैं वो वस्तुओं के साथ आकर्षित हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो वस्तुओं को भी छोड़ देते हैं, भगवान से भी प्रेम नहीं करते, वो तो शून्य में लीन होना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो संसार की हर एक वस्तु को यूटिलाइज करना जानते हैं। किस तरह से हर एक वस्तु कृष्ण को स्मरण करने के काम में आ सकती है, किस तरह से हर एक वस्तु को देखकर हम कृष्ण को स्मरण करें, किस तरह से हर एक वस्तु को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। हर एक वस्तु जो है उसको भगवान की सेवा में यूज करना, उपयोग करना, यही एकमात्र एक शुद्ध गुरु सिखाता है अपने शिष्य को कि हर एक वस्तु भगवान ने बनाई है, हर एक वस्तु का संबंध भगवान से है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत प्रेम करने योग्य है, तो समझो ये भगवान, उसको देखकर भगवान को याद करो कि वो स्वयं भगवान कितना प्रेम करने योग्य है। जो इतना छोटा सा जिसका अंश भी मुझे आकर्षित कर रहा है, तो वो भगवान कितना आकर्षण करने वाला होगा। तो सारा का सारा जो कुछ भी है वो भगवान का ही समझ के यदि हम भगवान की सेवा में उसे यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इस चीज से सबसे बहुत जो इम्पोर्टेंट बात जो हम समझ सकते हैं वो क्या है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को समझ जाते हैं कि हर एक वस्तु कृष्ण की है और इसके कृष्ण की सेवा में ही उपयोग करना है, तो हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो ईर्ष्यावान होते हैं ना, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पूरी भगवत गीता बताने के बाद अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें भगवत गीता बता दी है, परंतु इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचम न च माम योभ्य सूयते। जो ईर्ष्या रखते हैं उनको तो कभी भी बताना नहीं, जो तपस्वी नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है, और जो ईर्ष्या करते हैं उनको तो भगवत गीता बतानी ही नहीं चाहिए। तो यदि हम भगवान के इन शब्दों को समझते हैं कि हर एक वस्तु कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में ही उपयोग, तो हम किसी से, हमारे मन में ईर्ष्या आएगी नहीं। ईर्ष्या कब आती है? जब हम किसी में कोई गुण देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये गुण क्यों है, सब कोई उसकी ही तारीफ करते हैं, हमारे अंदर होना चाहिए ना, ताकि सब लोग हमारी तारीफ करें, सब लोग हमें लाइक करें। और जैसे अगर आप अच्छे सिंगर हो और आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, सब कोई आपकी प्रशंसा करता है, तो अचानक से कोई और दूसरी कोई लड़की होती है या कोई और व्यक्ति होता है जो आपसे भी अच्छा गाना गाता है, तो आपको कैसा लगेगा कि ये क्यों आई, ये नहीं होती थी तो मेरा ही सब मुझे ही पसंद करते थे, मेरी ही प्रशंसा करते थे। तो अगर हम ये सोचते हैं ना कि ये क्वालिटी उसके अंदर क्यों है, मेरे अंदर आनी है और होनी चाहिए, तब ईर्ष्या होती है। लेकिन यदि हम ये सोचें कि भगवान कितने महान हैं कि उसने मुझे ये गुण दिया है और उसे भी ये गुण दिया है, तो मैं अपने इस गुण को भगवान की सेवा के लिए यूज करूंगा और वो भी अपनी इस सेवा को भगवान के, तो जब अगर हम देखेंगे कि हर कोई जो है उसके अंदर जो गुण है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, तो ईर्ष्या नहीं होगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपनी किसी योग्यता से, अपनी किसी क्वालिटी से हम संसार में फेम प्राप्त करना चाहते हैं, हम संसार में प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, अगर कोई और के अंदर वो क्वालिटी हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें ईर्ष्या होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि हमारा गोल क्या होगा कि हम इस अपने इस गुण से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम जब भगवान को प्रसन्न कर रहे होते हैं तो फिर हम ये नहीं देखते कि दूसरों के अंदर ये क्वालिटी है, तो उससे हमें ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि दूसरों को देख कर क्या लगता है कि देखो भगवान ने उन्हें ये क्वालिटी दी है, तो भगवान कितने ज्यादा ये गुण, भगवान ने जब उसको अच्छा गाने का गुण दिया है या सुंदरता दी है, तो भगवान तो ये तो एक छोटा सा सफुलिंग मात्र है, भगवान के अंदर तो कितना अधिक ये गुण है, तो फिर हम और भी भगवान के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा भगवान के साथ कनेक्शन हमारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो जब हम इतना सोचना हमें आ जाए कि हर एक वस्तु जो कि सुंदर है वो भगवान की संपत्ति है, तो फिर हम डेफिनेटली भगवान से प्रेम करना शुरू हो जाते हैं कि वो भगवान कितना सुंदर होगा जिसने इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई हैं, इतनी आश्चर्यमय वस्तुएं बनाई हैं, जो छोटा सा एक सफुलिंग मात्र है, टेलर है, उसको देखकर हमें इतना आनंद आ रहा है, यह संसार हमें इतना आकर्षित कर रहा है, तो साक्षात भगवान कितना आकर्षण करने वाला होगा। और जैसे जैसे हम भगवान के विषय में अधिक से अधिक श्रवण करते हैं, जैसे जैसे सुनते जाते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम और भी बढ़ता है। इसलिए हमें सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, ताकि हमें भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में और भी बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, के प्रयास साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।